ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरा होने पर समावेशी विकास के माध्यम से सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।
श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्ध दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परियोजना के अंतर्गत चेनाब ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं के लोकार्पण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने कहा कि चिनाब रेल पुल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इससे जम्मू श्रीनगर के बीच रेल संपर्कों में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की रेलगाड़ियां आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार के अवसर सृजित करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक के लिए कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। मंत्री भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, संपर्क, प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों और आपसी हितों के अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को गति देने के लिए भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इटली की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान इटली भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि 35 दिनों से भी कम समय में उन्होंने अपने मित्र मारोस सेफकोविक, यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त के साथ 3 बैठकें की हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री थरूर ने चर्चा को भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए रचनात्मक और उत्पादक बताया। ब्रसल्स में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम की संघीय संसद के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष पीटर डी रोवर से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए श्री प्रसाद ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्री डी रोवर का आभार व्यक्त किया।
He shared his concern on the rising global terror. There were many other members who were there, but he was very profound. He recalled how in year 2016 there was a terror attack also in Belgium and the way they supported, expressed solidarity in the wake of Pahalgam tragedy. Grateful, sir.
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कल माओवादी नेता सुधाकर को मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुधाकर पिछले 3 दशकों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई मामलों में वांछित था। असम में बाढ़ की स्थिति कल से थोड़ी सुधरी है, जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति और बेहतर हुई है। असम में 2 और लोगों की मौत के साथ सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। मणिपुर में कल से समग्र बाढ़ की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि लगातार बारिश जारी है। पूर्वोत्तर राज्य के 26 में से 24 जिलों में 33,200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में समग्र बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।